Good morning. आज है भोलेनाथ शिव बाबा का सोमवार। आज सब शिव बाबा की पूजा करते हैं। तो बाबा ने भी आज अपना परिचय दिया है। बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा मुझे कोई नहीं जानता। कोई कहता परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई कहता नाम रूप से न्यारा है, कोई तो बहुत बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं और कोई कहते हैं वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, उसका तेज हम सहन नहीं कर सकते। तो उन सभी बातों का जवाब आज डायरेक्ट बाबा ने खुद दिया है। बाबा कहते मैं सर्वव्यापी होता तो मुझे याद क्यों करते। मैं कोई इतना बड़ा लिंग जितना बड़ा भी नहीं हूं, मैं अंगूठाकार भी नहीं हूं, और मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तो इतना हजारों सूर्यों से जो तेजों में है, तो बच्चा कहे मैं बाप का तेज सहन नहीं कर सकता तो वो बाप कैसे हुआ। तो बाबा ने आज भिन्न भिन्न रीति से डायरेक्ट अपना परिचय दिया है, बच्चों से बातें की है। लोग कहते हैं निराकार कैसे बात करेगा, निराकार कैसे आएगा, तो उसका जवाब भी आज की मुरली में मिलेगा। बाबा कहते लोग कहते वो आकर कैसे भगवान आ सकता है, वो ये भी नहीं जानते कि वो कब आएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ भी पता नहीं। मैं डायरेक्ट आकर के तुम बच्चों को ये सारी बातें बताता हूं। तो आज पूरी मुरली में निराकार शिव बाबा कैसे हमारे से बातें करते हैं और ज्ञान देते हैं उसका आनंद लेंगे, ये अनुभव करेंगे कि हाँ बाबा हमारे सामने निराकार अपना परिचय दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं और अपना कर्तव्य भी बता रहे हैं। आज है 16 मार्च 2026। मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिलती है, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है। कौन सी मत मिली है? कि देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। इस एक ही श्रीमत में सब कुछ आ जाता है। आज का प्रश्न है जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उसको तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर है, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते, मैं तो तुम्हारा बाप हूं, बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वो कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता। आज का गीत है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर देरे झोली। बाबा ने तो बहुत खजानों से झोली भर दी है। ओम शांति। भक्त कहते हैं हम बहुत कंगाल बन गए हैं। बाबा, हम सबकी झोली भर दो। भक्त गाते रहते हैं जन्म बाय जन्म। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां पावन देवी देवता होते हैं, वहां तो भरी हुई झोली है, तो कैसे भक्ति करेंगे कि झोली भरो? भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं, वो फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी, पुजारी, भगत, कंगाल बनते हैं। जन्म लेते लेते क्या बनते? बाबा ने 3-4 टाइटल दिए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना, माना केवल हिंदुओं के मंदिर में जाते हैं वही भक्त नहीं, जो भी अपने अपने स्थान पर जाते हैं सब भक्त हैं, अर्थात भक्ति करते हैं, कुछ चाहते हैं अपने इष्ट देव और देवियों से। इस समय सब पतित तमोप्रधान हैं, इसलिए सब पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा, हम भक्तों की झोली भर दो। तो संगम युग पर आकर के बाबा ने कितने खजानों से झोली भर दी। कल भी अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा ना, कितने खजाने दिए हैं, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सबसे झोली भरपूर कर दी है। भक्त भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो? वो तो धन मांगते हैं, हम बच्चे क्या मांगते हैं? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ, बस उस एक बात में सब कुछ आ गया, वो तो केवल एक धन मांगते हैं, और हमने एक चीज मांगी उसमें तन का भी सुख आ गया, मन का भी आ गया, धन का भी आ गया, पद भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, एक ही बात में सब कुछ आ गया। वहां तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। ये सच्ची गीता है, वो गीता नहीं, वो गीता सुनते हैं, लेकिन ये सच्ची गीता क्यों कहा बाबा ने कि उस गीता पर तो अनेक टिप्पणियां निकल आई, हरेक ने उसको एनालाइज करके अपनी अपनी गीता अपने अपने तरीके से बनाई, अपने अपने तरीके से समझाया, लेकिन ये डायरेक्ट बाबा आकर के गीता सुना रहे हैं। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, वो अपनी मत से अलग अलग बनाया। इस समय बाबा डायरेक्ट आकर के ज्ञान सुना रहे हैं, इसलिए ये सच्ची गीता है। भगवान ने तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, तो इसी राजयोग से राजा भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है, पूरी राजधानी तैयार होती है, इसलिए राजयोग है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी यहां से बाबा अपना परिचय देते हैं। बाप कहते हैं, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? गॉड फादर तो कहते हैं, लेकिन फादर का नाम, रूप, देश, काल कुछ भी पता नहीं, तो फिर उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, बिना परिचय क्या प्राप्त करेंगे? ना भगवान को जानते, ना उसकी रचना को जानते। बाप आकर कहते हैं, कल्प कल्प के संगम पर आता हूं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूं। अब वो डायरेक्ट बाबा खुद कह रहे हैं कि मैं रचता ही आकर के तुमको बताता हूं। कई तो कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, वो आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है, वो तो कहते आ नहीं सकता, हम कहते हैं वो खुद आया है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो श्री कृष्ण जयंती भी गाई जाती है, दोनों में फर्क है ना। शिव बाबा निराकार की जयंती है, कृष्ण साकार की जयंती है। अब शिव जयंती कब होती है वो मालूम होना चाहिए ना। वे जयंती मनाते हैं भाई, गांधी जयंती मनाएंगे या और किसी महापुरुषों की जयंती मनाएंगे, तो वो कब आया, उसकी कौन सी बर्थ डेट है, उस अनुसार मनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन श्री यशु बाबा कब आए वो पता ही नहीं। ऐसे तो कृष्ण की जयंती मनाते हैं, कृष्ण का भी पता नहीं, वो कहेंगे द्वापर में आया। सतयुग में श्री कृष्ण कब आया, कैसे वो बना कृष्ण, वही पता नहीं। बाबा कहते अब शिव जयंती कब होती है वो मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, ये तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं, कब भरते हैं, अब भरते हैं। भगत पुकारते हैं हे भगवान झोली भर दो। अभी हम सबकी तो झोली भरी हुई है। भगत पुकारते हैं हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान है। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं, क्या कहते, आत्मा निर्लेप है। तो बाबा ने उसको कहा है कि आत्मा ही भोगती है, शरीर के साथ भोगती है, लेकिन वो समझते हैं परमात्मा भी नहीं आता, आत्मा भी निर्लेप है, तो सारा खेल ही खत्म। फिर तो ये ड्रामा बना ही क्यों। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। कहते हैं वो आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है तो कर्म के अनुसार ही लेती है, हरेक को कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है बोलते हैं। फिर आत्मा को निर्लेप भी कहते हैं। अब निर्लेप है तो फिर वो कर्म का फल कैसे भोगती है। फिर कहते आत्मा को निर्लेप है, कोई भी बुद्धिवान मनुष्य नहीं जो समझाए उनको कि आप दो बातें क्यों बोल रहे हो, दोनों बातें एक दूसरे से विपरीत है। बाबा कहे कोई भी बुद्धिमान नहीं जो उनको समझाए। इसमें भी अनेक मत है, जो घर से रूठते वो शास्त्र बना देते हैं। जो घर से रूठते हैं तो भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, साधु बन जाते हैं, फिर बैठ के अपने विचार लिखेंगे, वो भी एक किताब बन जाएगी, उसको भी मानने वाले बहुत निकल पड़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता है एक। व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वो भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वो बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। वो श्लोक नहीं बोलेगा भगवान, भगवान ज्ञान देगा, सद्गति का रास्ता बताएगा, निर्विकार बनने की विधि बताएगा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है, गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। कहते हैं ना ईश्वर की गतमत न्यारी है, तो कौन सी मत न्यारी है, कौन सी गति करेंगे ये पता नहीं है। अच्छा कौन सी गतमत न्यारी है, ईश्वर की गतमत न्यारी है ये किसने कहा। आत्मा कहती है उसकी सद्गति के लिए जो मत है उसको श्री मत कहा जाता है, वो ईश्वर देता है। तो ईश्वर जो हमें सद्गति करने के लिए मत देते, श्री मत देते, वही न्यारी है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूं मन मना भव, कि मन मेरे में लगाओ। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। ये है मुख्य श्रीमद, कि अपनी बुद्धि को और कहीं नहीं लगाओ, किसी देहधारी में नहीं लगाओ, मेरे में लगाओ। मन मना भव, मां एकम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, इस राजयोग के एम ऑब्जेक्ट है ही क्या है? हमारे राजयोग के एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। कई लोग कहते हैं ना, आप लोग जाते हो, क्या पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, आपको क्या मिले, कौन सी डिग्री मिलेगी, कौन सी सर्टिफिकेट मिलेगा? तो बाबा ने कहा, आपका एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। ये हमारी डिग्री है, हमारी पढ़ाई का फल है। पढ़ाई से कोई राजा नहीं बनते हैं। दूसरी पढ़ाई जो पढ़ते हैं उससे राजा बनते नहीं हैं। उससे डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, और कोई पोजीशन मिलेगा, आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन राजा नहीं बनता है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है। गीता में ही है, तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, कितनी बड़ी स्कूल है, और कितनी हाई एजुकेशन है, जो और कोई पढ़ ही नहीं सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। उस प्रोफेशन के तो और प्रोफेसर तैयार होते जाते हैं एक के बाद एक, यहाँ कोई नहीं तैयार होगा। वो एक ही टीचर रहेगा, वही पढ़ाएगा। गीता में ही है, तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, आता भी तब हूँ। बाबा खुद बताते हैं, आता भी तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। आज सारी दुनिया में कहीं भी राजा का राज्य नहीं है, हर जगह लोकतंत्र हो गया है, या मिलिट्री रूल है कहीं कहीं, या फिर लोकतंत्र है, राजा का राज्य नहीं है। तब बाबा आकर के राजयोग सिखाते हैं राजा बनने के लिए। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है, वो मेरा कोई यह रूप नहीं है। तो बाबा का रूप है बिंदी, लेकिन समझाने के लिए तो हम भी लिंग बनाते हैं ना। अभी शिवरात्रि थी तो सभी सेंटर्स ने बड़े बड़े शिवलिंग बनाए, किसी ने हीरो से बनाया, किसी ने रुद्राक्ष से बनाया, किसी ने नारियल से बनाया, किसी ने बर्फ से बनाया, लेकिन हमारा तो लक्ष्य रहता है शिव बाबा बिंदी है, वो प्रत्यक्ष करना। लेकिन ये लिंग से हम बताते हैं कि उसको मनुष्यों जैसा शरीर नहीं है, वो निराकार है। मनुष्य कह देते कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है, तो मैं ना इतना बड़ा लिंग रूप हूँ, ना मैं तेजोमय हूँ। अर्जुन ने देखकर कहा, बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे, बच्चा बाप का रूप देख सहन न कर सके, ये कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। हम भी अगर कोई साक्षात्कार हो जाए किसी को भी, तो खुश होगा, वाह मुझे देखो निराकार का साक्षात्कार हुआ, ज्योति का साक्षात्कार हुआ, बिंदी का साक्षात्कार, ये तो खुशी की बात है। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़े ही है, मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा माना परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा करते हैं, सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते क्योंकि वहां तो है सुख। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब सत्युग में सुख में है तो क्यों सिमर करेंगे, क्यों याद करेंगे, क्यों भक्ति करेंगे। इसका भी अर्थ नहीं समझते। तोते मौफिक सब कहते रहते हैं, ये कहावत बन गई, वो सब गाते रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि सुख में सिमरन नहीं करते, अर्थात सतयुग में कोई भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सुख कब होता है, दुख कब होता है, भारत की ही तो बात है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में दो कलाएं कम हुई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता है, ही सुखदाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, मुख मीठा होता है माना स्वर्ग की बातें करें तो कितनी खुशी हो जाती है, वाह इतना वहां सुख होगा, वहां सोने के महल होंगे, वहां ये होगा, तो ये सब खुशी की बातें हैं। हेवन में फिर दुख कहां से आया। कहते हैं कि वहां भी कंस जरासंधि आदि थे, परंतु क्या बाबा कहते, परंतु ये हो नहीं सकता। जहां सुख है वहां दुख नहीं, जहां रात है वहां दिन नहीं, जहां दिन है वहां अंधकार नहीं। भक्त समझते हैं कि हम नौधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है, दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। लक्ष्मी की पूजा की, उसका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, इसमें ही खुश हो जाते हैं। भगवान को देखा, किसी का साक्षात्कार हुआ, बस खुश हो गए। बाबा कहते हैं तुमको बाप मिला, साथ में तुम उनसे ज्ञान लिया, उनसे प्राप्तियां की, सिर्फ तुम देखकर खुश नहीं होते हो, परंतु है कुछ भी नहीं। अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ खलास, ऐसे तो नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। सिर्फ देखने से साक्षात्कार करने से कोई मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिल नहीं जाती। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंच है। भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा है, कौन सा सबसे ऊंचा वर्षा कौन सा मिलता है। किसी को वर्षा मिलता है तो इसके पिता ने पीछे इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी है, इतना मकान छोड़ा है, गाड़ियां छोड़ी है, इतनी कंपनियां छोड़ी है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, भारत में ऊंचे से ऊंचा वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रदान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रदान होते हैं। पुकारते हैं हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है, सभी ने देखा है ना सीढ़ी का चित्र। बाबा अभी कई दिनों से सीढ़ी के चित्र को याद करते हैं। ये भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे, 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प दिखा दिया है। बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। आज बाबा सभी बातों का जवाब दे रहे हैं। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया, आधा आधा होता है ना। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। कहते ना श्री कृष्ण ने रथ पर बैठकर अर्जुन को गीता सुनाई। बाबा कहते हैं रथ की बात नहीं है, मैं इस समय आकर के तुमको गीता सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता? फिर तो साक्षात्कार में ही देखना पड़ेगा, दिव्य दृष्टि में ही देखना पड़ेगा। वो संदेशियां वतन में जाती है, वहां देखती है। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है, वो भी उन्हों को पता नहीं। श्री कृष्ण 84 जन्म लेंगे, हर जन्म में अलग माता पिता होंगे, उनको तो एक ही जन्म का पता है। अब ये भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो, तुम कौन हो अभी? ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। सतयुग में हम सर्वोत्तम कर्म करते थे, फल भोगा, अकर्म का फल भोगा, अकर्म का किया, माना कोई पाप कर्म भी नहीं किया और ना पुण्य किया, पुण्य कर्म का फल भोगा। तुम सदा सुखी थे 21 जन्म। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए हो। तुम ही सो पूज्य देवता थे, तुम्हें पुजारी पतित बने हो, भारत अब कंगाल है। भगवानुवाच तू जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुख धाम था। अब इतनी बड़ी स्मृति कौन दिला सकता है? बाबा ही दिला सकते हैं, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको वहां भेजा, वही स्मृति दिलाते हैं। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया, जो देवी देवता थे अब वो कांटे बन गए हैं, अब जंगल बन गया है। जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं अभी कांटे लगते हैं तो कांटों से निकालने वाला भी तो बाबा ही है, अब वो कैसे निकालते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है, एक दो पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। क्या परिचय दिया आज सारी मुरली में? बाबा ने अपने बारे में बताया तो अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परम आत्मा, मैं सबका बाप हूँ। सभी आत्माएं बाप को पुकारती है कि हे परम पिता परमात्मा, जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परमात्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मैं अंगुष्ठ मिसल भी नहीं हूं। आज बाबा अपने लिए जो जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंड है, वो एक एक क्लियर कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं अंगुष्ठ मिसल भी नहीं हूं, मैं परम आत्मा हूं, तुम सबका बाप हूं। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, नॉलेज फुल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के जाड़ का बीज रूप हूं। तो बीज में ही सारे जाड़ का सार होता है, नॉलेज होती है। मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी है? बाबा बताते हैं मुझे जानते नहीं है लेकिन मेरी महिमा कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? जिसका कोई एड्रेस नहीं है तो उसको कहाँ से बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? एड्रेस है तब तो उसको बुला सकते हैं। साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं। मैं वो साधु संत शास्त्र सुनाते हैं और मैं तुमको आकर राजयोग सिखलाता हूँ। बात समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। तो अभी हमें सब प्रकार का बाबा ने बताया तो हर प्रकार का ज्ञान आ गया। ज्ञान से सद्गति मिल जाती है। भारत को सद्गति बाप ही देते, सर्व का सद्गति दाता एक है। सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? सद्गति बाप करता है तो दुर्गति फिर रावण करती है। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? बाबा सारा बता के फिर रियलाइज कराते हैं कि तुमको कौन पढ़ा रहा है, ये किसकी मुरली सुन रहे हो, तुमको कौन श्रेष्ठ बना रहा है, तुम किसके सामने बैठे हो। ये है परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर मुख्य एक्टर है। बाप समझाते हैं कि ऊंच ते ऊंच पार्टधारी कौन है, सबसे ऊंचा पार्ट किसका है, किसका पार्ट है। जब बाबा ने कहा मैं भी पार्ट बजाता हूं तो ऊंचा पार्ट तो उसका ही हो गया ना। ऊंचते ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं परमात्मा सबको भेजने वाला है, ये भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाबा कहते मैं भेजता नहीं हूं, ये अनादि ड्रामा बना है, तो अपने अपने समय पर सब आ जाते हो, मैं भी अपने समय पर आता हूं, कोई किसको भेजता नहीं है। बाप कहते हैं कि मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, और क्या कहते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाबा को शास्त्रों का भी पता है, ज्ञान देते हैं वो भी पता है, बच्चे क्या करते हैं वो भी पता है। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूं। अनेक शास्त्र हैं तो अनेक शास्त्र तो हम पढ़ नहीं सकते, तो बाबा ने आकर के सारे शास्त्रों का सार बताया। इस सार में सब कुछ है। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहां निकला, कहां निकला? मनुष्य तो जरूर यहां ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, तो बीज में सारा सार है, तो बाबा ने सारा सार बताया। इस वृक्ष की उत्पत्ति पालना विनाश कैसे होता है वो कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबर बार अपने समय पर आते हैं, हम भी अपने समय पर आएंगे, सभी एक साथ तो नहीं आएंगे, कोई सत्युग स्टार्टिंग में आएगा, कोई बीच में आएगा, कोई लास्ट में आएगा, कोई त्रेता में भी आएगा। तो बाबा कहते हैं सब अपने अपने समय पर आएंगे और बाबा भी अपने समय पर आएंगे। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ जबकि वो धर्म नहीं है, वो प्रायलोप हो गया है। अनेक धर्म हैं, लेकिन जो मेन फाउंडेशन है वो नहीं है, उसकी बाबा कहते मैं आकर के स्थापना करता हूँ। बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाबा को भी रहम आता है, जब रहम आया तब तो लास्ट में आ गया। देवताओं की लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनका राज्य सृष्टि पर कब था वो कुछ नहीं जानते। जैसे रामनवमी मनाते हैं तो राम कब आए, कृष्ण का मनाते कृष्ण कब आए वो नहीं पता, लेकिन ये परंपरा चलती है तो फिर निभाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। कौन से चित्र? ये जो देवताओं के चित्र हैं वो सभी देवी देवता धर्म की निशानी है। तो बाबा कहते हैं अभी भारत का वो देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सारा आनंद लिया ना, डायरेक्ट शिव बाबा ने कैसे अपनी बातें सुनाई। लोग तो अभी भी जानते नहीं, याद करते हैं, ढूंढते हैं, और बाबा ने डायरेक्ट हमको अपना सारा क्लेरिफिकेशन दिया कि मेरे लिए जो जो आप बताते हो, लेकिन मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करता हूँ, कब करता हूँ, क्यों करता हूँ, सब बताया। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहली बात, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। तो हर्षित रहने का होमवर्क मिला है। दूसरा होमवर्क कौन सा दिया आज बाबा ने? एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ये दो आज का लेसन है जो सारा दिन हम याद रखेंगे तो सब हो जाएगा। वरदान आज का, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए क्या करना है, उसकी निशानी क्या होगी, वो उसके क्लेरिफिकेशन में बताया है। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए देखो कितनी बड़ी बात है। लाइट हाउस माइट हाउस ऐसे नहीं बनेंगे, बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। कोई बात सुनी, समा ली, खत्म वहीं पर। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है। ज्यादातर तो इंटरेस्ट रहता है ना, सुना कुछ तो कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बाबा कहते हैं इससे समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। हम सार में रहेंगे तो दूसरों को भी सार का अनुभव करा सकेंगे। हम विस्तार में रहते हैं तो फिर दूसरे भी विस्तार में जाते हैं और डिबेट भी होती है। बाबा कहते हैं आप सार में समा जाओ तो दूसरों को भी सार का अनुभव कराएंगे। आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। यह अव्यक्त इशारा। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इसके अंतर्गत यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, देखो कितनी बड़ी निशानी बताई बाबा ने, जिसका निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। ये चार निशानियां उसकी प्रबल दिखाई पड़ेगी। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हरेक की विशेषता को स्मृति में रख, एक दो में फेथफुल रहो। विशेषता देखेंगे तब तो फेथफुल रहेंगे, अगर एक दो की कमी देखेंगे तो फेथ कहाँ रहेगा। तो बाबा ने भी यही कहा, तो हरेक की विशेषता को स्मृति में रख, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। किसी ने कोई बात कही हमसे या सुनाई, उसको हम किस भाव से लेते हैं उस पर निर्भर रहता है कि हमारा सामने वाले के साथ संबंध कैसा रहता है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आफ्टर मेडिटेशन ऑल द डबल फॉरेनर्स प्लीज बी रिमेन सीटेड। वी हैव फ्यू डायरेक्शंस फॉर ऑल ऑफ यू।